एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। ये किताब है अर्नेस्ट बेकर की पुलित्जर पुरस्कार विजेता कृति द डिनायल ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के डर का अस्वीकार।
बिल्कुल। और ये किताब ना एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन चौंकाने वाला सवाल उठाती है कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीजें हासिल करना, रिश्ते बनाना, समाज में अपनी जगह खोजना, यहां तक कि कभी कभी तो भयानक काम भी कर जाते हैं, इन सब के पीछे असली वजह क्या है? क्या चीज है जो हमें ड्राइव करती है?
हाँ, और बेकर का जवाब बड़ा सीधा है, शायद थोड़ा असहज भी लगे। वो कहते हैं कि हमारे ज्यादातर कामों के पीछे एक अनकहा सा, अनदेखा सा डर छुपा है, मौत का डर। ये सोचना ही अजीब लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी की भाग दौड़, हमारे चुने हुए रास्ते, हमारी भूमिकाएं, रोल्स, शायद इसी एक डर से बचने या उसे जीतने की कोशिश है।
हाँ, और देखिए ना, आज के दौर में बात और भी जरूरी हो जाती है। जब हम अपनी एम्बिशंस को देखते हैं या समाज में जो तनाव चल रहे हैं उन्हें देखते हैं या अपनी पहचान को ही समझने की कोशिश करते हैं, तो बेकर का नजरिया एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। ये हमसे पूछता है कि भाई, हम जो भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी है? और हमारे जीवन का असली लक्ष्य, गोल क्या है? वो क्या वो लक्ष्य भी कहीं ना कहीं मौत के डर से ही जुड़ा हुआ है?
तो चलिए इस दिलचस्प और हाँ थोड़ी मुश्किल लगने वाली गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है। अर्नेस्ट बेकर कौन थे ये?
अर्नेस्ट बेकर, हाँ, वो 1924 से 1974 तक रहे। एक अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी थे, पर उनको किसी एक दायरे में बांधना बहुत मुश्किल है। उन्होंने देखिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, यहां तक कि धर्मशास्त्र, सबको मिलाकर इंसानी प्रेरणा की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। वो ऐसे विचारक थे जो अलग अलग डिसिप्लिन्स के बीच, आप कह सकते हैं, पुल बनाते थे।
यही तो उनकी खासियत थी, जैसे आपने कहा, किसी एक विषय में बंधे नहीं रहे। वो किर्कगार्ड जैसे दार्शनिकों के अस्तित्व से जुड़े जो सवाल हैं, उनको फ्रायड के मनोविश्लेषण से जोड़कर देखते थे। वो समझना चाहते थे कि भाई, इंसान होने का मतलब क्या है, हमारी गहरी इच्छाएं क्या हैं, हमारे डर क्या हैं।
और जो बात उनके काम को और भी ज्यादा आपके हैं तो मार्मिक और प्रमाणिक बनाती है, वो ये है कि उन्होंने द डिनायल ऑफ डेथ तब लिखी जब वो खुद कैंसर से जूझ रहे थे। मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी, तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे थे, वो उस अनुभव को जी रहे थे। ये चीज उनकी लेखनी को एक असाधारण गहराई देती है, सचमुच।
हाँ, और दुख की बात है कि किताब उनके निधन से बस कुछ ही महीने पहले छपी। उन्हें मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार मिला, लेकिन इस किताब ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे अहम विचारकों में जगह दिला दी, और उनके विचार आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं।
बिल्कुल। तो ये किताब आखिर कहती क्या है? इसका जो मूल विचार है वो मानव अस्तित्व के एक गहरे विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पर टिका है। बेकर कहते हैं कि हम इंसान, हम दोहरे प्राणी हैं, एक अजीब सा मिश्रण।
दोहरा प्राणी? कैसा मिश्रण, थोड़ा समझाइए।
हाँ, देखिए, एक तरफ तो हमारे पास है हमारा प्रतीकात्मक स्व, सिंबॉलिक सेल्फ जिसे कहते हैं, हमारा मन, हमारी चेतना, जो अनंत की कल्पना कर सकती है, जो खुद को दुनिया में खास मानती है, जो बड़े बड़े सपने देख सकती है, इतिहास रच सकती है, मतलब हम अपने विचारों में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा भौतिक शरीर, एक जानवर जैसा शरीर, जो खाता है, पीता है, बीमार पड़ता है, जिसमें से खून बहता है, जो मलमूत्र त्यागता है और आखिरकार बूढ़ा होकर सड़कर मर जाता है। बेकर ने इसी विरोधाभास को दिखाने के लिए एक बहुत यादगार और हां थोड़ी चौंकाने वाली उपमा दी है। इंसान एक गुदा वाला देवता है, अ गॉड विद एन एनस।
अरे वाह, एक गुदा वाला देवता, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ देवता बनने की इच्छा, दूसरी तरफ शरीर की सच्चाई, ये सीमाएं, तो इस टकराव से होता क्या है?
बेकर कहते हैं इसी टकराव से, हमारे इस असीम मन और इस नश्वर शरीर के बीच जो ये संघर्ष है ना, इसी से मौत का एक गहरा भयानक डर पैदा होता है। और ये डर इतना बड़ा है, इतना ओवरवेलमिंग है कि हम इसका सीधे सामना नहीं कर सकते। सोचिए, अगर हम हर पल अपनी मौत के बारे में ही सोचते रहें तो शायद जी ही ना पाए,
है ना?
हाँ, बिल्कुल।
तो हम करते क्या है इस डर का, इसे अनदेखा करते हैं।
हाँ हाँ, हम इसे दबा देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, अपनी चेतना से दूर धकेल देते हैं। लेकिन ये दबा हुआ डर खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी सारी ऊर्जा को, हमारी सारी साइकिक एनर्जी को एक दूसरी दिशा में मोड़ देता है। और इसी को बेकर कहते हैं अमरता परियोजना, इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट, या नायक प्रणाली, हीरो सिस्टम।
अच्छा, ये अमरता परियोजना, ये क्या चीज है? मतलब क्या हुआ है इसका?
ये वो सांस्कृतिक रास्ते हैं, वो मान्यताएं हैं, वो मूल्य प्रणालियां हैं जिन्हें अपनाकर हमें ये महसूस होता है कि हम किसी न किसी रूप में अमर हो जाएंगे। भले ही हमारा शरीर मर जाए, लेकिन हम किसी और रूप में जिंदा रहेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत सारा पैसा कमाना, नाम कमाना, शोहरत हासिल करना, कोई महान कलाकृति बनाना, या फिर अपने परिवार का नाम रोशन करना, किसी बड़े धर्म या राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर देना। ये सब तरीके हैं जिनसे हम दुनिया में अपनी एक पहचान, एक स्थायी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी भूमिका, रोल चुनते हैं जिसका लक्ष्य हमें मौत से बड़ा दिखाना होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा व्यक्तित्व, जिसे हम अपनी पहचान समझते हैं, वो शायद असली न हो।
बेकर तो यही कहते हैं, वो हमारे चरित्र या व्यक्तित्व को एक जरूरी झूठ कहते हैं, वाइटल लाई। ये एक तरह का कवच है, एक मुखौटा है जो हमने ओढ़ रखा है। ये हमें मौत की उस भयानक सच्चाई से बचाता है और हमें अपनी चुनी हुई सांस्कृतिक अमरता परियोजना पर, या कहें कि जीवन की भूमिका, रोल पर ध्यान लगाने में मदद करता है। और ये झूठ जरूरी है, क्योंकि इसके बिना शायद हम जी ही ना पाएं। ये हमें फंक्शन करने देता है।
ये तो काफी गहरा विचार है। तो क्या बेकर बताते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? किताब में इस पर और बात है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब में वो इसे काफी विस्तार से समझाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो उन्होंने इंसान की स्थिति और उससे निपटने के जो तरीके हैं उनको खंगाला है। जैसे शुरुआत में वो इसी नायक बनने की चाह पर जोर देते हैं। हम सब में ये इच्छा होती है कि हम भीड़ से अलग दिखें, कुछ खास बने, मूल्यवान महसूस करें, अपनी शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठें। ये हमारी अमरता पाने की इच्छा ही है जो हमें इस नायकत्व की ओर ढकेलती है। हमारा जीवन एक तरह से देखा जाए तो इसी नायक की भूमिका को निभाने का एक मंच बन जाता है।
और फिर वो मौत का डर।
हाँ, फिर वो उस डर की गहराई दिखाते हैं कि ये कोई मामूली चिंता नहीं है, ये एक स्थायी आतंक है, एक टेरर है जिसे हमें दबाना पड़ता है ताकि हम रोजमर्रा का जीवन जी सकें। हमारा जो सामान्य व्यवहार है, हमारी नॉर्मल जिंदगी, वो इसी दबे हुए डर के ऊपर बनी हुई है।
बेकर ने फ्रॉयड जैसे दूसरे विचारकों को भी इसमें शामिल किया है ना?
हाँ, उनके विचारों पर भी बात की है। बिल्कुल, बेकर फ्रॉयड की इज्जत करते हैं, खासकर इस बात के लिए कि फ्रॉयड ने दमन या रिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को पहचाना, कि हम मुश्किल चीजों को अपनी चेतना से दूर रखते हैं। लेकिन बेकर कहते हैं कि फ्रॉयड ने, आप कह सकते हैं, गलत चीज पर उंगली रख दी। असली दबा हुआ डर बचपन के किसी यौन आघात का, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, नहीं है, बल्कि वो विनाश का, मिट जाने का, मौत का डर है। हमारा चरित्र या कवच इसी मूल डर से बचने का एक तरीका है। हमारी भूमिका, रोल, इसी डर को छुपाने का एक साधन बन जाती है।
और फिर वो किर्केगार्ड जैसे दार्शनिकों की बात करते हैं।
हाँ, बेकर किर्केगार्ड को असली मनोवैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि किर्केगार्ड ने समझा था कि चिंता या भय, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि इंसान होने का हिस्सा है। ये चिंता हमारे उसी दोहनेपन से आती है। हम मौत से भी डरते हैं, मतलब दुनिया में खो जाने से, अपनी पहचान खो देने से, और हम जीवन से भी डरते हैं, मतलब अकेले होने की जिम्मेदारी से, अपनी आजादी से। हम इसी तनाव में जीते हैं।
अच्छा, और इसी भाग में वो ट्रांसफरेंस की बात करते हैं। ये क्या है? ये शब्द मैंने सुना है पर।
ट्रांसफरेंस, हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है बेकर के लिए। वो कहते हैं कि क्योंकि हम अपनी नश्वरता और ब्रह्मांड में अपनी जो छोटी सी जगह है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम अपनी ताकत और अर्थ की जरूरत को दूसरों पर डाल देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये दूसरे लोग हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे नेता, हमारे गुरु, हमारे प्रेमी, कोई भी। हम उन्हें लगभग ईश्वर जैसा मान लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा देंगे, हमारे जीवन को अर्थ देंगे, हमारे होने की पुष्टि करेंगे। हम उन्हें एक उद्धारकर्ता की भूमिका सौंप देते हैं।
तो ये एक तरह की निर्भरता हुई अपनी जिम्मेदारी से बचना।
हाँ, बेकर इसे ठीक यही मानते हैं, एक तरह की गुलामी। हम अपनी आजादी से डरते हैं और सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और ये चीज हमें अपनी असली ताकत का एहसास करने से रोकती है। हम दूसरों को अपने जीवन के लक्ष्य तय करने देते हैं।
और बेकर आधुनिक समाज के बारे में क्या कहते हैं? क्या आज ये अमरता परियोजनाएं बदल गई हैं, पहले से अलग हैं?
हाँ, बेकर आधुनिक समाज की काफी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि पुरानी जो पारंपरिक नायक प्रणालियां थी, जैसे धर्म या मजबूत समुदाय, वो कमजोर पड़ गए हैं। उनकी जगह आधुनिक सेक्युलर समाज ने जो विकल्प दिए हैं, जैसे बस चीजें इकट्ठा करना यानी कंज्यूमरिज्म, या सेलिब्रिटीज की पूजा करना, या फिर सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली थेरेपी, वो कहते हैं ये सब खोखले विकल्प हैं। वो हमें असली गहरा अर्थ या टिकाऊ अमरता का वो एहसास नहीं दिला पाते, और इसीलिए आज का इंसान ज्यादा चिंतित और दिशाहीन महसूस कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी भूमिका यानी रोल और लक्ष्य गोल को लेकर वो पुरानी वाली स्पष्टता नहीं मिलती।
ये तो वाकई चिंताजनक लगता है। तो क्या इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी कोई लेना देना है?
बिल्कुल, बेकर मानसिक बीमारियों को भी इसी नायकत्व या अमरता परियोजना के नजरिए से देखते हैं। ये बहुत बहुत ही अलग और अनोखा तरीका है मानसिक स्वास्थ्य को समझने का।
कैसे?
जैसे न्यूरोसिस या डिप्रेशन को वो कैसे समझाते हैं इस नजरिए से?
जैसे न्यूरोसिस, इसे वो उस व्यक्ति की स्थिति मानते हैं जो समाज के दिए हुए नाइट खेल में, या कहें समाज की दी हुई भूमिका रोल में पूरी तरह शामिल होने से डरता है। उसे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, उसका जो कवच है वो जरूरी झूठ वो काफी मजबूत नहीं है, इसलिए वो अपनी दुनिया सिकोड़ लेता है, ज्यादा जोखिम नहीं उठाता।
अच्छा,
और साइकोसिस?
वो इसका ठीक उल्टा है। यहाँ व्यक्ति का जो रक्षा कवच है वो पूरी तरह टूट जाता है, बिखर जाता है, और वो व्यक्ति मौत और जीवन की भयानक सच्चाई का सीधा सामना करता है बिना किसी फिल्टर के। वो समाज के बनाए खेल और भूमिकाओं और रोल से बिल्कुल कट जाता है। वो खुद से झूठ नहीं बोल पाता, जो हम सब थोड़ा बहुत बोलते हैं।
और डिप्रेशन?
डिप्रेशन बेकर के अनुसार तब होता है जब व्यक्ति अपनी चुनी हुई या समाज द्वारा दी हुई अमरता परियोजना में है अपनी जीवन भूमिका रोल में विश्वास खो देता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अर्थहीन है, उसका लक्ष्य गोल हासिल नहीं हो सकता, उसकी नायक बनने की कोशिश बेकार है। ये निरर्थकता का, मीनिंगलेसनेस का गहरा एहसास है।
बाप रे, ये सब सुनकर तो लगता है कि हम सब एक बहुत ही मुश्किल खेल में फंसे हुए हैं। तो बेकर कोई समाधान भी बताते हैं? जिए कैसे फिर इस सब के साथ?
देखिए, कोई आसान समाधान तो नहीं है। बेकर एक तरह का विरोधाभासी रास्ता सुझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें जागरूक होना होगा, हमें अपनी स्थिति के डर को और अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के भ्रम को, मतलब हमारी भूमिकाओं और लक्ष्यों के पीछे के भ्रम को स्वीकार करना होगा। ये जानना होगा कि ये सब शायद मौत से बचने के तरीके हैं।
लेकिन सिर्फ जानना काफी है? क्या इससे कुछ बदलेगा?
नहीं, जानना ही काफी नहीं है। जानने के साथ साथ हमें फिर भी एक रचनात्मक, जीवन को हाँ कहने वाले नायकत्व के प्रति, एक सार्थक भूमिका रोल और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। लेकिन इस बार शायद ज्यादा जागरूकता के साथ, ज्यादा होश के साथ। और इसके लिए बेकर कहते हैं हमें अपने छोटे से अहंकार से परे किसी बड़ी चीज में यकीन करने की जरूरत पड़ सकती है। वो इसे कॉजा सुई प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी खुद से बड़ा कोई मकसद ढूंढना।
तो असली नायक कौन है फिर बेकर के अनुसार?
असली नायक वो है जो अपनी नश्वरता को, अपनी सीमाओं को साहस के साथ स्वीकार करे, और फिर भी इस निरर्थकता के एहसास के बावजूद अपनी जीवन में अर्थ पैदा करने की कोशिश करे, अपनी भूमिका को जानते हुए कि ये एक भूमिका है, फिर भी उसे पूरी शिद्दत से निभाए। यही असली चुनौती है, और शायद यही असली लक्ष्य भी।
तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो जिन्हें हम याद रख सकते हैं, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है, मौत का अनकहा डर ही हमारी ज्यादातर गतिविधियों के पीछे की मुख्य प्रेरणा है। हमारे काम, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, सब कहीं ना कहीं इसी छिपे हुए डर से प्रभावित हैं। हमारी जिंदगी की भूमिकाएं, रोल्स, इसी डर से निपटने के तरीके हैं, जाने अनजाने में।
हाँ, ये बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारा चरित्र या व्यक्तित्व एक जरूरी झूठ है। ये हमारी असली प्रकृति नहीं, बल्कि मौत की सच्चाई से बचने के लिए बनाया गया एक कवच है, एक भूमिका है जो हमें दुनिया में काम करने लायक बनाती है।
सही कहा। तीसरी, हम सब अमरता की परियोजना या नायकत्व में लगे हैं। हम किसी न किसी तरह से प्रतीकात्मक रूप से अमर होना चाहते हैं, चाहे वो समाज में नाम कमाकर हो, परिवार का नाम रोशन करके, कोई महान काम करके, या फिर किसी धर्म, समुदाय या राष्ट्र जैसी बड़ी पहचान से जुड़कर। भारत में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, है ना? सामाजिक रुतबा, पारिवारिक इज्जत, धार्मिक पहचान, ये सब हमारी अपनी अपनी अमरता परियोजनाएं या जीवन लक्ष्य गोल्स हो सकते हैं।
बिल्कुल। चौथी बात थोड़ी थोड़ी डरावनी है। नायकत्व का एक स्याह पक्ष भी है जो बुराई को जन्म देता है। जब एक समूह की अमरता परियोजनाएं या नायकत्व की परिभाषा दूसरे समूह से टकराती है तो संघर्ष होता है। हम अपनी भूमिका, रोल और लक्ष्य को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराते हैं, उन्हें दुश्मन बना देते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं। युद्ध, नफरत, नरसंहार, ये सब अक्सर इसी होड़ का नतीजा होते हैं। आजकल हम जो सामाजिक और राजनीतिक टकराव देखते हैं उसे इस नजरिए से भी समझा जा सकता है, है ना?
हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। पांचवी, ट्रांसफरेंस, यानी हम अपनी सुरक्षा और अर्थ की जरूरत दूसरों पर डाल देते हैं। हम नेताओं में, गुरुओं में या अपने साथियों में अपना उद्धारकर्ता ढूंढते हैं, उन्हें ये भूमिका सौंप देते हैं और अपनी आज़ादी, अपनी जिम्मेदारी खो बैठते हैं। ये निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। भारतीय समाज में भी हम ये देख सकते हैं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में या कभी कभी परिवार पर अत्यधिक निर्भरता में।
सही बात। छठी, इंसान होने का विरोधाभास, वही गुदा वाले देवता। हम एक ही साथ असीम संभावनाओं वाले प्राणी हैं और दूसरी तरफ सीमित नश्वर प्राणी हैं। यही हमारे दुख का स्रोत है, पर शायद यही हमें अद्वितीय भी बनाता है।
हाँ, और सातवीं, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है, मानसिक रोग नायकत्व की विफलता है। जब हमारी अमरता परियोजना, हमारी चुनी हुई भूमिका या लक्ष्य, गोल विफल हो जाता है या हम उसमें यकीन खो देते हैं तो मानसिक पीड़ा जन्म लेती है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ दिमागी गड़बड़ी नहीं बल्कि जीवन में अर्थ खोजने के संघर्ष से जोड़कर देखता है।
बेकर की किताब में कुछ पंक्तियां वाकई बहुत असरदार है, आपने पहले भी जिक्र किया था, कुछ याद है जो श्रोताओं के साथ साझा कर सके?
हाँ, एक तो ये है, इंसान की स्थिति की विडंबना यह है कि उसकी सबसे गहरी जरूरत मौत और विनाश की चिंता से मुक्त होना है, लेकिन यह जीवन ही है जो इसे जगाता है और इसलिए हमें जीवन से सिकुड़ना पड़ता है।
इसका मतलब क्या हुआ, जीवन से सिकुड़ना?
मतलब ये कि पूरी तरह से जीना, हर अनुभव को गहराई से महसूस करना, कहीं ना कहीं हमें हमारी नश्वरता की, मौत की याद दिलाता है। इसलिए हम अक्सर अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को सीमित कर लेते हैं, अपनी दुनिया छोटी कर लेते हैं ताकि उस डर का सामना ना करना पड़े। हम अपनी भूमिका, रोल को भी एक सुरक्षित दायरे में रखते हैं।
अच्छा, और
एक और है जो नायक बनने की चाह से जुड़ी है। इंसान अपनी तुच्छता तब तक सहन नहीं कर सकता जब तक वो उसे ब्रह्मांडीय महत्व के अर्थ में नहीं बदल सकता। ये सीधे सीधे हमारी जरूरत को दिखाता है कि हम अपनी भूमिका, रोल को महत्वपूर्ण बनाएं। हमें लगता है कि हम इतने छोटे और महत्वहीन हैं कि हमें किसी बड़े लक्ष्य, गोल या कहानी का हिस्सा बनना जरूरी है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।
और एक वो पंक्ति जो सीधे डर को बयान करती है।
हाँ, वो बहुत पावरफुल है। यही आतंक है, शून्य से उभरना, एक नाम होना, आत्मचेतना, गहरी आंतरिक भावनाएं, जीवन और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक असहनीय आंतरिक तड़प होना और इस सब के साथ फिर भी मर जाना। ये उस मूल डर को पकड़ती है जिससे बचने के लिए हम इतने सारे मनोवैज्ञानिक कवच और जीवन की भूमिकाएं बनाते हैं।
और आखिरी, जो सामान्य होने पर सवाल उठाती है।
हाँ,
जिसे हम सामान्य कहते हैं, वो एक साझा झूठ और साझा दमन है।
ये चुनौती देता है हमारे नॉर्मल होने के विचार को। ये कहता है कि नॉर्मल होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि समाज के बनाए हुए भ्रमों और डरों से सफलतापूर्वक तालमेल बिठा लेना है, समाज के दी हुई भूमिका को बिना सवाल किए अपना लेना है।
ये सारे विचार बहुत गहरे हैं, तो इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
अमरता परियोजना या मेरी भूमिका खतरे में है क्या? मुझे अपने जीवन के लक्ष्य में अर्थ की कमी महसूस हो रही है?
हाँ, ये अच्छा पॉइंट है।
और समाज को समझने में
दूसरा,
ये सामाजिक और राजनीतिक झगड़ों को देखने का एक नया नजरिया देता है। हम राष्ट्रवाद या धार्मिक कट्टरता को सिर्फ विचारों का मतभेद ना देखकर बल्कि दो अलग अलग समूहों के नायक बनने की होड़ के रूप में देख सकते हैं। अपनी अपनी अमरता की कहानियों को, अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों को बचाने की लड़ाई के रूप में हर कोई अपने को सही साबित करना चाहता है। और हमारे आसपास की संस्कृति, जैसे उपभोक्तावाद, तीसरा, यह हमें उपभोक्तावाद और सेलिब्रिटी कल्चर को समझने में मदद करता है। शायद महंगी चीजें खरीदना या किसी मशहूर हस्ती का दीवाना होना, ये अपनी नश्वरता और सीमाओं को भुलाने का एक आसान तरीके से शक्ति और महत्व महसूस करने का एक कमजोर प्रयास है। ये सतही भूमिकाएं और लक्ष्य, गोल्स हैं जो शायद असली कमी को पूरा नहीं करते।
और रिश्तों में कैसे मदद मिल सकती है?
हाँ, चौथा, ये हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अगर हम पहचान सके कि कहीं हम अपने साथी, दोस्त या परिवार के सदस्य पर ट्रांसफरेंस तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें पूरा करेंगे, हमें बचाएंगे, हमें अर्थ देंगे? क्या हमने उन्हें ऐसी भूमिका दे दी है जो उनकी नहीं है? इसे समझने से हम ज्यादा यथार्थवादी और स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले।
और शायद सबसे जरूरी, ये हमें ज्यादा प्रामाणिक अर्थ खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम अपनी नायकत्व परियोजना या जीवन भूमिका की जांच कर सकते हैं। क्या ये मैंने सोच समझकर चुनी है? क्या ये वाकई मेरे मूल्यों से मेल खाती है? क्या मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरा है या दूसरों को नीचा दिखाने पर आधारित है? ये आत्मचिंतन हमें शायद ज्यादा गहरे और सच्चे अर्थ की ओर ले जाए।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो मेरे ख्याल से ये है कि मौत का डर, जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते, वो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को चुपचाप आकार दे रहा है। हमारे व्यक्तित्व, हमारी संस्कृतियां, हमारी महानतम उपलब्धियां और हमारे सबसे बुरे काम सब कहीं ना कहीं इस एक सच्चाई को नकारने की कोशिश से जुड़े हैं कि हम नश्वर हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक तरह से इस डर के इर्द गिर्द अपनी भूमिका और लक्ष्य तय करने की कहानी है।
हाँ, ये नजरिया दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देता है, भले ही थोड़ा असहज करने वाला हो। इसके बाद आप अपने आसपास लोगों की बातों में, उनकी महत्वाकांक्षाओं में, संस्थाओं में, यहाँ तक कि देशों के बीच के झगड़ों में भी ये अमरता परियोजनाएं या नायक बनने की कोशिशें देखने लगेंगे। आप लोगों की भूमिकाओं, रोल्स और उनके पीछे छिपे असली लक्ष्यों को शायद बेहतर समझ पाए।
हाँ, ये किताब कोई आसान जवाब या सुकून नहीं देती, बल्कि एक गहरी पैठ बनाने वाली स्पष्टता देती है। बेकर ने बड़ी हिम्मत से इंसान होने की एक केंद्रीय मुश्किल सच्चाई को उजागर किया है, और उन्होंने हमारे मन की निजी दुनिया को इतिहास और समाज के बड़े मंच से जोड़ा है। ये उनकी बड़ी उपलब्धि है।
शायद एक आखिरी सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, ये जानने के बाद कि मौत का डर हमें अनजाने में चला रहा है, क्या ये हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है? क्या हम ज्यादा होश में रहकर, ज्यादा साहस के साथ अपने जीवन भूमिका, रोल और अपने लक्ष्य, गोल चुन सकते हैं? ऐसे लक्ष्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय ज्यादा रचनात्मक और जीवन को हाँ कहने वाले हों।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।